दौला लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो
नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरिक्षणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सिद्धमनन्तमणिन्द्रिय मनुवममपत्तसोक्षणवज्रं केवलपहोहनिज्जिय
नमः। यह आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भगवान भूतबली और पुष्पदंत आचार्य। हमारे यहाँ पर पहली पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 119 पर आ गए, 119। 14 पूर्वों की अपनी बात चल रही थी। दृष्टिवाद में से ये था, वो तो अंग बाह्य श्रुत है, उसे तो होता ही है, परंतु इनकी मुख्यता है ना, इसलिए इसको लेते हैं। बाकी का तो होगा ही ना, इतना 11 अंग और ये पूर्वों का ज्ञान है उसको, ये तो प्रथमा योग परिक्रम वो तो वो भी जानेंगे।
मैं एक बात करूं?
हाँ प्लीज।
हमारा जो मेरे मन में जो प्रश्न था कि 11 अंग और 14 गुरु बोलते हैं और कभी कभी 12 अंग और 14 गुरु बोलते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो 11 अंग और 14 गुरु में बाकी के जो चूली का प्रथमान योग वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा लेना क्या कैसा?
नहीं, वो तो कहने की पद्धति है, 12 अंगों का ज्ञान है या 11 अंग 14 पूर्व, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व कहने की पद्धति है मिथ्या दृष्टि के लिए, इसलिए 11 अंग और 14 पूर्व कह देंगे, या 12 अंग और 14 पूर्व क्यों? 12वें अंग में तो 12 अंगों का ज्ञान है, उसमें 14 पूर्व आ गए हैं सारे, ये तो एक जस्ट एक पद्धति पड़ी इसलिए, और उसके कुछ खास इंक्लूजन नहीं है। कंफ्यूजन कैसे होगा, हम सही जानते हैं ना।
अभी देखो 12 अंग में तो उसके 5 भेद है ना दृष्टिवाद में।
हाँ, परंतु बाकी तो निग्लिजिबल है ना, इन्हीं की मुख्यता है। यानी ऐसा होता कि उसमें कुछ खास बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि
नहीं नहीं,
इन्होंने पदों का प्रमाण कहा है, जो कुछ बात बताई है वो तो इसी की मुख्यता से।
नहीं, पर उसका अर्थ ऐसा थोड़ी होता है कि 12 अंग और 14 पूर्व कहने से, तो
देखो ये किसी के प्रवचनकार के मुंह में आता है, परंतु ऐसा कहीं इस तरह से नहीं लिखा हुआ मिलता।
कैसा? 12 अंग और 14 पूर्व।
हाँ, यानी किसी प्रवचन करते समय 12 अंग 14 पूर्व कहना बात अलग है, 11 अंग 14 पूर्व कहना बात अलग है, परंतु जब हम कर्णानियोग के ग्रंथ के अनुसार जाएंगे तो 11 अंग और 12वें अंग में से किसी को 10 पूर्व का ज्ञान है, किसी को 14 पूर्व का है, तो पूर्व तक पहुंचे हैं तो उसके पहले का ज्ञान है, उसको ऐसा समझ लेना उसमें।
तो ये 11 और 12 अंग के बाद ही पूर्व आता
है? नहीं नहीं, 12वें अंग का 5 भेद हमने देखे, हाँ। दृष्टिवाद के परिक्रम सूत्र प्रथमान योग नहीं, वो ये 14 पूर्व पूर्वगत जिसको कहेंगे, और फिर चूलिका, तो उसमें से हमने देखो पूर्वों की बात अपनी चल रही थी, तो पहला उत्पाद पूर्व देखा था ना हमने, नाम देख लो उसके, 115 पेज पर ये सब नाम बताए हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, वो प्रवाद कहो या वाद कहो एक ही बात है, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व, उसमें से कौन से में कितने वस्तु होती है वो हमने देखा था। उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु है ना, अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु है, वीर्यानुवाद पूर्व में 8 वस्तु है, कल हमने देखा, वही मैं पढ़ रही हूँ 116 पेज पर। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में 18 वस्तु है, उसके बाद ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु है, सत्य प्रवाद पूर्व में भी 12 वस्तु है, परंतु उसके जो पदों की संख्या बिना दिख हो सकती है। फिर सत्य प्रवाद में वो कौन से भाषा के प्रकार देखे थे, सत्य के प्रकार देखे थे विस्तार से हमने। सत्य प्रवाद पूर्व के बाद अभी आत्म प्रवाद पूर्व की बात हम देखने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 119 नीचे लास्ट 2 लाइन, वहां से हम पढ़ेंगे अभी। आत्म प्रवाद पूर्व 16 वस्तुगत 320 प्रावृतों के 26 करोड़ कितने हैं उसमें, 26 करोड़ पद आ गए। कल हमने देखा था कि ये तो 360 में भी कुछ कम थे ना, देखो देखो, हाँ ये 16 वस्तुगत है,
320 प्रावृत।
ये तो जो हमने पहले देखा था अग्रायणी पूर्व के 14 वस्तु थे और 96 लाख पद थे, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12 वस्तु थे और 1 करोड़ पद थे, सत्य प्रवाद में भी 12 वस्तु थे और 1 करोड़ और 6 पद थे, और यहाँ 16 वस्तु है और 26 करोड़ पद है। ख्याल में है ना बातें, उनकी संख्या ही ना दिखो सकती, संख्या 1000 ये उसका सामान्य से कथन होता है। अब उसके द्वारा क्या क्या बताते हैं, तो आत्मा का वर्णन करते हैं कैसे, कि जीव वेत्ता है, वेत्ता समझते हैं, जानने वाला,
वेदन करने वाला,
विष्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है, इत्यादि रूप से आत्मा का वर्णन करता है। कहा भी है,
विष्णु मीन्स व्यापक है।
हाँ हाँ, विष्णु यानी व्यापक। ये पुस्तकें लेके रखिए, फिर बीच में उठना नहीं पड़े आपको, वो जीव कांड लेके रखना, रेड वाला,
जानने वाला।
पहले जो हमने अलग अलग बातें देखी ना, तो वेत्ता है ना, जानकार होता है वेत्ता,
वेदन करने वाला, ये बुद्ध है जानने वाला लिखा था ना,
वेदो अलग बात लिखी ना, वक्ता तो वत्ता का अर्थ होता है, वत्ता ये पानी है, भोक्ता ये देखेंगे इसमें। हाँ ऐसे कर, 4 के आगे चले गए थे। हाँ ये 498 से चालू हुआ था, आगे बढ़ेंगे। आत्म प्रवाद पूर्व है ना, जीवो कत्ताय वेत्ताय, वेत्ता का अर्थ उन्होंने वक्ता कहा, और यहाँ वत्ता कहा उन्होंने, जीवो कत्ता ये वत्ता ये, और अपने यहाँ वेत्ता लिखा है, और नीचे अर्थ में वही लिखा है, वेत्ता है विष्णु है,
व्यक्ति
अर्थात
जानता है, इसलिए वेद, व्यक्ति तो वही वेत्ता हुआ ना,
वैसे नहीं जानता है। अच्छा वैसे अर्थात जानता है इसलिए वेदक कहा उसका।
दोनों बड़ा पर लिखा ना।
हाँ दोनों ही आ गए उसमें। देखो देखो हम क्रम से पढ़ेंगे अभी इसको। कत्ता ये वत्ता लिखा है। वेदी का अर्थ उन्होंने वेत्ता का वेत्ती वेदी का वेत्ती, परंतु यहाँ पहला जो वत्ता लिखा है ना वो वेत्ता लिखा है वहाँ गाथा में, और यहाँ लिखा है वत्ता। 81 पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। ये कहा भी है कहने के पहले जो यहाँ से गाथा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। जीवो कत्ताय वत्ताय पाणी भोताय पुगलो वेदो विन्नु स्वयंभूय शरीरित मानवो। अभी जीव करता है कहा भी है ना। दोनों का इकट्ठा अर्थ है ठीक। 82 भी पढ़ेंगे। सत्ता जंतु यमाणी माई जोगी असंकड़ो असंकड़ो यखेतन्नु अंतर अपात हे वय। जीव करता है और वत्ता कहा है उन्होंने वक्ता है। वेत्ता वो वेदी के लिए वेदों के लिए वेत्तो ये सब वो अलग आ जाएगा। कॉमेंट किया है हाँ, पर ये वेनो विन्नो बताए ना वेदो विन्नो सेकंड लाइन वेदो वेदो का उन्होंने वेत्ता कहा है। देखो वहां जो हमने कहा था पढ़ी वेत्ता कहा था, यहाँ वत्ता कहा है यानी वक्ता है। जीव करता है वक्ता है प्राणी है भोक्ता है यानी जीवो करता है वत्ता है पाणी भोक्ता है पोगलो पुद्गल है वेदो वेद है ने वेदक कहा था उन्हें विष्णु है स्वयंभू है। ये आगे उसके अर्थ भी किए उन्होंने हाँ। शरीरी है मानव है सकता है जंतु है मानी है मायावी है योग सहित है संकुट है असंकुट है क्षेत्रज्ञ है और अंतरात्मा है। ये आत्मप्रवाद आत्मा के बारे में आत्मा कैसा है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आगे इन्हीं दोनों गाथाओं का अर्थ कहते हैं।
सकता है के?
सब बताएंगे अभी। वह इस प्रकार है तो जीव शब्द से शुरू किया ना तो जीता है जीवित रहेगा और पहले जीवित था इसलिए जीव है। हम हमेशा कहते हैं जीव नाम क्यों पड़ा उसका अनादि से जीता आ रहा है वर्तमान में जी रहा है भविष्य काल में अनंत काल तक जीता रहेगा मरेगा कब
कभी
हा? तो कौन मरेगा अरे शरीर कब जिंदा था शरीर कभी जिंदा ही नहीं था और ये कभी मरेगा ही नहीं फिर भी मरण के डर से रो रहा है मरा जा रहा। तो जीव का अर्थ किया। अब कर्ता का अर्थ करते हैं। शुभ और अशुभ कार्य को करता है इसलिए करता है वो परिणमन हो रहा है ना उसका तो यह परिणमति स करता तो उस परिणम रूप पर्याय रूप परिणमता इसलिए उसका करता है। वक्ता है सत्य असत्य और योग्य अयोग्य वचन बोलता है इसलिए वक्ता है। अब यहाँ कौन से नए कहाँ लगाना वो सब समझ लेना है। फिर प्राणी है इसके प्राण पाए जाते हैं इसलिए प्राणी है। जीवों को प्राणी भी कहते हैं अभी वो निश्चय से और व्यवहार से सब समझ लेना उसके अंदर। भोक्ता है देव मनुष्य तिर्यंच और नारकी के भेद से चार प्रकार के संसार में पुण्य और पाप का भोग करता है इसलिए भोक्ता है। यानी शुभ अशुभ कार्य करता है इसलिए करता है और उसका फल भोगता है, तो इसलिए पुण्य पाप का फल भोगता है इसलिए भोगता है। उसके बाद पुद्गल है, छह प्रकार के संस्थान, संस्थान ने आकार, और नाना प्रकार के शरीरों द्वारा पूर्ण करता और गलाता है। वो पूरण और गलन ये सब पुद्गल का स्वभाव है ना, यानी इकट्ठा होना और गल जाना। पूर्ण करता है ना, वो पूरण करता है और गलन करता है। गलाता है इसलिए पुद्गल है, क्योंकि संसार अवस्था में कर्म के साथ हमेशा ही वो बंधा हुआ पाया जाता है। इसलिए भी जीव को भी रूपी कहा है जब तक वो मुक्त नहीं होता है। ये सम्यक तो मार्गना में ये अपेक्षा लगाई हमने, जीवकांड में पढ़ी थी, तो यहाँ उसको पुद्गल कह दिया है। सुख और दुख का वेदन करता है इसलिए वेद है, अथवा जानता है इसलिए वेद है। लिखा है ना, वेदता का अर्थ ये है, जानता है या वेदन करता है, दोनों उसके अर्थ होते हैं। नहीं, उसको वेदता कहा या वेदक भी कहेंगे, वहां गाथा में उसको वेदो कहा था। उसके बाद वेद की बात है, विष्णु है, प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है इसलिए विष्णु है। स्वयंभू है, स्वतः ही उत्पन्न हुआ है इसलिए स्वयंभू है। शरीर ही है ने, संसार अवस्था में इसके शरीर पाया जाता है इसलिए शरीरी है। अब मानव शब्द कैसे तैयार हुआ, मनु ज्ञान को कहते हैं, उसमें यह उत्पन्न हुआ है इसलिए मानव है। अन्यमति मनु नाम का वो जो कुछ आद्य पुरुष कहते हैं ना मनु, और इसके सारे मनु की संतान इसलिए मानव कहते हैं। सकता है, स्वजन संबंधी मित्र वर्ग आदि में आसक्त रहता है इसलिए सकता है। जंतु है ना, क्या चार गति रूप संसार में उत्पन्न होता है और दूसरों को उत्पन्न करता है इसलिए जंतु है। इसके मान कषाय पाई जाती इसलिए मानी है, इसके माया कषाय पाई जाती इसलिए माया भी चाहिए ना। ऊपर माई लिखा है ना, इसलिए माई कहा उन्होंने श्लोक में माई लिखा है। माई का अर्थ थे मायावी, नहीं 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 वो बराबर है वहाँ माई शब्द, क्योंकि उन्होंने श्लोक में जो शब्द था उसको लिया है माई, हाँ उसका अर्थ है मायावी। इसके तीन योग होते इसलिए योगी है। संकुट यानी अति सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित होता है इसलिए संकुट है, और असंकुट संपूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है इसलिए असंकुट है। कौन करता है इतना ऐसा, पूरे लोक में व्याप्त कौन होता है, केवली समुद्रात, अन्य समुद्रात में नहीं इतना, मात्र केवली समुद्रात में। संकड़ो, हाँ साकड़ो, हाँ क्षेत्र अर्थात अपने स्वरूप को जानता इसलिए क्षेत्रज्ञ है, और आठ कर्मों के भीतर रहता है इसलिए अंतरात्मा है। हाँ देखो 120 पेज पर नीचे पहला नंबर का जो पाठ है ना, वहाँ लिखा है वेदों के स्थान में वेदी, गोमरसार जीवकांड में वेदों यहाँ लिखा था, यहाँ वेदी है 81 में। संकड़ों के स्थान में संकुड़ो, असंकड़ों के स्थान में असंकुड़ो, ऐसा पाठ है। वन 21 में 11 नंबर, नयद्वयेना इन्हें दो नयों से व्यवहार से और निश्चय से क्षेत्रम लोकालोकम और स्वस्वरूपम च जानाति इति क्षेत्रज्ञ यानी बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा लोकालोक को जानता है और अपने को भी जानता है ना स्वक्षेत्र को भी जानता है इसे क्षेत्रज्ञ कहा अपना स्वरूप भी जानता है ये हरेक में वो निश्चय व्यवहार लगाया ये गोमरसार जीव कांड में हरेक में निश्चय व्यवहार लगाया देख लो पाँच सौ एक पर से शुरू करो जीवती इन्हें जीता है व्यवहार से दस प्राणों से जीता है और निश्चय से ज्ञान दर्शन सम्यक स्वरूप गुणों से उसके तो कायम रहते इसलिए उससे जीता है भाव प्राण को धारण करता है इसलिए जीव कहा व्यवहार से शुभाशुभ कर्म को और निश्चय से चैतन्य प्राणों को करता है इसलिए करता है चैतन्य प्राणों को करता है ना अपना ज्ञान का कार्य चल रहा है उसका इसलिए करता है व्यवहार से सत्य असत्य वचन बोलता है व्यवहार से बोलता है करते थे वो बोलता है ये कहना व्यवहार है ये व्यवहार से बोलता है और निश्चय से नहीं बोलता ऐसे नहीं उसका अर्थ लेना व्यवहार निश्चय कथन में आता है तो जीव शुभाशुभ वचन बोलता है ये व्यवहार कथन है और निश्चय कथन क्या होगा अरे वो बोल ही नहीं सकता वो वक्ता नहीं है प्राणी क्यों कहते हैं दोनों नयों से जो प्राण कहे हुए इसके पाए जाते हैं यानी निश्चय नय से तो उसका भाव प्राण जो जानन रूप कार्य है वो तो सिद्धों के भी चलता है हमेशा ही वो उसको प्राणी कहेंगे और व्यवहार नय से द्रव्य प्राणों की बात करेंगे तो जिस पर्याय में जाता है जैसे संगी पंचेंद्रिय हुआ पर्याप्त तो दस प्राण है एक इंद्रिय में चला गया कितने होते हैं पर्याप्त उनके चार हो गए इस तरह से ये क्या है व्यवहार कथन है यानी व्यवहार प्राण कहेंगे द्रव्य प्राण कहेंगे इसको तो दोनों ही नयों से उसके प्राण पाए जाते हैं अब भोक्ता में किसका भोक्ता है तो व्यवहार से शुभाशुभ कर्म के फल को भोगता है यानी पुण्य पाप के फल को भोगता है और निश्चय से अपने निज स्वरूप को भोगता है अपने आनंद का अनुभव करता है इसलिए भोगता है अब पुद्गल क्यों कहा तो व्यवहार से कर्म नौकर्म रूप पुद्गलों को पूरता है और गलाता है यानी उसको ग्रहण करता है छोड़ता है कर्मों को भी और शरीर के नौकर्म परमाणुओं को भी इसलिए पुद्गल कहते हैं निश्चय से आत्मा पुद्गल है इन्हें यहाँ दोनों नहीं लगते देखो दो नहीं कहीं कहीं लगते कहीं मात्र व्यवहार नहीं लगा पुद्गल कहने में निश्चय नहीं लगेगा उसके ऊपर अब ये वैत्य ने जानने वाला है तो दोनों नयों से लोकालोक संबंधी त्रिकालवर्ती सर्व ज्ञेयों को वैत्य ने जानता है इसलिए वेदक कहते हैं हाँ दस नंबर पे यही बताया क्योंकि वहाँ जो लिखा है ना वो तो मूल उन्होंने बात की है जीवकांड की बात है यहाँ पर हाँ वही मैं पढ़ रही हूँ आपको हिंदी में से ये बात धवला पुस्तक में फुटनोट में लिखी है सारे अभी मैंने पढ़ा ना व्यवहारेण कर्म नोकर्म पुद्गलान पूरयति गालयति चैति पुद्गलः निश्चयेन अपुद्गलः वही बात अभी हमने पढ़ी ना और नयद्वय ने दोनों नयों से लोकालोकगतम त्रिकाल गोचरम सर्वम वेत्ति वेत्य ने जानाति इति वेदः इसलिए उसको वेदक या वेद कहा
देखो मुझे ये बात बतानी है कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पर को जानते ही नहीं है पर को जानता ये कहना व्यवहार है इसके लिए ये हम रेफरेंसेस बता रहे हैं आपको कि हाँ नयद्वय ने यानी दोनों ने से लोकालोक को जानता है क्या लिखा देखो ये 120 नंबर का धवला का पृष्ठ उसके 10 नंबर की जो पॉइंट है नयद्वय ने लोकालोक गतम त्रिकाल गोचरम सर्वम वेत्ति जानाती इति वेद यानी वो दोनों ने से जानता है वही बात नीचे भी है 11 नंबर में और 121 नंबर का जो 11 नंबर है उसमें भी वही बात है नयद्वयेन क्षेत्रम यानी लोकालोकम स्वस्वरूपम च जानाती इति क्षेत्रज्ञ यानी वो दोनों नये से जानता है ऐसा नहीं कि व्यवहार से जानता है और निश्चय से जानता है दोनों नये से जानता है निश्चय से भी जानता है ये बात बता रहे यानी कई लोगों की ऐसे मान्यता है कि पर को जानते हैं कहना व्यवहार है, ठीक है वो व्यवहार है, लेकिन निश्चय से जानते हैं ये भी तो बात है ना। इसके ऊपर बहुत चर्चा मतलब बात चलता है, तो अपने पास
नहीं, दोनों नयों से दोनों को जानता है। हाँ, अभी विष्णु की बात चलेगी, मैं जीवकांड में से पढ़ रही हूँ। व्यवहार से अपने देह को, वहाँ केवली समुद्घात से सर्वलोक को, तथा निश्चय से ज्ञान द्वारा सर्वलोकालोक को, वेवेष्टि अर्थात व्याप्ता है, इसलिए विष्णु कहते हैं। विष्णु ने व्याप्ता है तो कहाँ व्याप्ता है, तो अभी हम क्या कहें, व्यवहार से कहाँ व्याप्ता है, तो अपने देह को व्याप्त रहता है, और केवली समुद्घात की अपेक्षा पूरे लोक को व्याप्त रहता है उसके आत्म प्रदेश, और ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानता है ना, तो उसमें व्याप्ता है कहते, सर्वगत कहते हैं ना उसको, उसकी अपेक्षा वो व्यापक है, विष्णु है। अभी स्वयंभू यद्यपि व्यवहार से कर्म के वश से संसार में परिणमता है, तथापि निश्चय से स्वयं आप ही अपने में ज्ञान दर्शन स्वरूप ही से भवती अर्थात परिणमता है, इसलिए स्वयंभू कहते हैं। स्वयं होता है उसका भवन परिणमन, स्वयं होता है इसलिए स्वयंभू कहते हैं। वो द्रव्य स्वयंभू ऐसा नहीं कह रहे, द्रव्य तो स्वयं सिद्ध है, द्रव्य तो अनादि का है, द्रव्य को स्वयंभू कहेंगे तो कभी ना कभी हो गया ऐसा कहना पड़ेगा, यानी अपने से उत्पन्न हुआ। अरे उत्पन्न तो पर्याय होती है, इसे पर्याय की अपेक्षा स्वयंभू कहेंगे उसको, यानी ज्ञान आदि जो पर्याय हो रही है वो अपने से ही हो रही है, इसलिए स्वयंभू कहेंगे। व्यवहार से औदारिक आदि शरीर इसके है, इसलिए शरीर ही कहते हैं, निश्चय से शरीर ही नहीं है। देखो कहीं कहीं दोनों नहीं लगा रहे, कहीं कहीं मात्र व्यवहार नहीं लगता, ये तो इसलिए हर जगह उसका हर एक का अलग अलग उन्होंने वर्णन किया है। अभी मानव क्यों कहा, व्यवहार से मनुष्यादि पर्याय रूप से परिणमता है इसलिए मानव है। उपलक्षण से, उपलक्षण है ना, अकेले मानव पर्याय मनुष्य पर्याय नहीं धारण करता, नारकी भी होता है, देव भी होता है, तीर्यंश भी होता है, उसमें एक को मुख्य करके कह दिया फॉर एग्जाम्पल, उसको कहते उपलक्षण से, यानी वही लक्षण से, यानी इसी मनुष्यादि पर्याय रूप आदि लिखा ना, तो उसमें बाकी भी समझना, नारकी तीर्यंश देव रूप से भी परिणमता है। निश्चय से मनु अर्थात ज्ञान, उसमें भव अर्थात सत्ता रूप है इसलिए मानव कहते हैं, यानी वो ज्ञान की सत्ता वाला है इसलिए उसको मानव कहते हैं। व्यवहार से कुटुंब मित्रादि परिग्रह में सजति अर्थात आसक्त होकर प्रवर्तता है इसलिए सक्ता कहते हैं, निश्चय से सक्ता नहीं है, निश्चय से उसका स्वरूप कोई किसी में आसक्त नहीं है। व्यवहार से संसार में नाना योनियों में जायते अर्थात उपजता है इसलिए जंतु, ये शब्द कैसे तैयार हुआ, तो जायते इति जंतु, जायते ने उत्पन्न होता है, निश्चय से जंतु नहीं है। जायते उसमें क्या लिखा है, नाना योनियोषु जायत, जायत जायते इति, जायते अब आगे मानी क्यों कहा, व्यवहार से मान अर्थात, वही तो पूछा उन्होंने, वो वही से देखकर पूछ रहे थे, जायते चाहिए, जायत हुआ है ना। व्यवहार से मान अर्थात अहंकार इसके है इसलिए मानी कहते हैं, निश्चय से मानी नहीं है। व्यवहार से माया जो कपट वह इसके है इसलिए मायावी कहते हैं, निश्चय से मायावी नहीं है। व्यवहार से मन वचन काय क्रिया रूप योग इसके है इसलिए योगी कहते हैं, निश्चय से योगी नहीं है। व्यवहार से सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना द्वारा प्रदेशों को संकोचता है इसलिए संकुट कहते हैं, और केवली समुद्धता द्वारा सर्वलोक में व्याप्ता है इसलिए असंकुट कहते हैं, और निश्चय से प्रदेशों के संकोच विस्तार रहित किंचित कम शरीर चरम शरीर प्रमाण है, इसलिए संकुट असंकुट नहीं है, ना संकुट है ना असंकुट है, यानी जो संकोच होना विस्तार होना ये संसार अवस्था में होता रहता है। दोनों नयों से क्षेत्र जो लोकालोक उसको जाना तेने ज्ञ अर्थात जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहते हैं। व्यवहार से आठ कर्मों के अभ्यंतर प्रवर्तता है और निश्चय से चैतन्य स्वभाव के अभ्यंतर प्रवर्तता है, इसलिए अंतरात्मा कहते हैं। और चकार से व्यवहार से कर्म नोकर्म रूप मूर्तिक द्रव्य के संबंध से मूर्तिक है, निश्चय से अमूर्तिक है, इत्यादि इत्यादि में आत्मा के और भी स्वभाव का वर्णन इसमें है। और इसमें 26 करोड़ पद है, यानी आत्मा का कैसा कैसा वर्णन किया है इसमें सारा, निश्चय व्यवहार सब। हाँ, अभी आते 122 पृष्ठ पर। कर्म प्रवाद पूर्व इसमें 20 वस्तुवत, यानी 20 वस्तु है इसके अंदर, वस्तु समझते ना, वस्तु किसको कहा, एक एक वस्तु में 20 प्रावृत होते हैं, वो उसकी जो अधिकारी चैप्टर से वो अलग। तो इसमें 20 वस्तु है और एक एक वस्तु में 20 प्रावृत है, इसलिए 20 × 20 400 प्रावृतों के 1,80,00,000 पद। वहाँ कितने 16 ही वस्तुएं थी ना, कितनी थी आत्म प्रवाद में, 16 थी मेरे ख्याल, 16 थी ना, हाँ 16 वस्तुओं में 26 करोड़ पद थे। अब यहाँ 20 वस्तुओं में 1,80,00,000 पद है, ख्याल में है ना, इन्हें ऐसा नहीं कि इतने हो गए तो उतने ही पद हो गए, वो हीनादिक होते हैं। तो इसमें 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन करता है, ये कौन सा है, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, प्रत्याख्यान यानी त्याग, 30 वस्तु इसमें, 600 प्रावृतों के 84,00,000 पदों द्वारा, इसमें और कम है, द्रव्य भाव आदि की अपेक्षा परिमित काल रूप और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान। परिमित यानी हमने ये 8 दिन के लिए अष्टानिका के लिए हमने कुछ त्याग किया, वो परिमित काल है ना, मर्यादित काल। अपरिमित यानी हम मरण तक कोई नियम अंगीकार करते हैं, कोई त्याग करते हैं, तो वो अपरिमित काल। तो परिमित काल रूप और अपरिमित काल रूप प्रत्याख्यान, उपवास विधि, 5 समिति और 3 गुप्तियों का वर्णन करता है। ये प्रत्याख्यान पूर्व का नाम कहीं सुना है क्या, परिहार विशुद्धि नाम का जो संयम होता है वो किसके होता है, तो कहते कहते पहले 30 साल तक तो गृहस्थ अवस्था में रहा, सुखी जीवन जिसको कहेंगे,
सुखी गृहस्थ जीवन।
बाद में तीर्थंकर के दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पादमूल में 8 साल तक पृथक वर्ष तक रहा और ये प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया, तो उनके कुछ विशिष्ट संयम प्राप्त है, उसका नाम है परिहार विशुद्धि। वैसे सामयिक क्षेत्रों का स्थापना तो होगा ही, क्योंकि रेगुलर मुनिराज तो वे थे ही थे, इन एडिशन इसके ये पढ़ा, यानी उसका पूरा अभ्यास हुआ। मात्र शब्दों के द्वारा नहीं होता, वो तो वैसा अंगीकार भी करेंगे ना सारे। अब 10वां है विद्यानुवाद पूर्व, 15 वस्तुगत, 300 प्रावृतों के 1,10,00,000 पदों द्वारा, अंगुष्ठ प्रसेना आदि 700 अल्प विद्याओं का, रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का, और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में हम आकाश देखते हैं ना, वो अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, इन 8 महानिमित्तों का वर्णन करता है। ये निमित्त ज्ञान भी इसमें आ गया। यानी वो निमित्त देखकर वो उसका फल समझ सकते हैं, यानी अंतरिक्ष आकाश की तरफ देखकर या पृथ्वी की तरफ देखकर, किसी के कपाल यानी जो मस्तक है, हाथ है, या कोई चेहरा देखकर कोई बताते ना, वो इस शास्त्र सारा स्वर स्वप्न स्वप्नों का जो कुछ फल बताते हैं वगैरह वगैरह। ये दशपूर्वी क्या है ना, जो दस पूर्वों को जानता है उसमें भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी ऐसे दो भेद है। भिन्न दशपूर्वी ने दशपूर्वी का अभ्यास किया और उसके बाद इसमें तो बहुत सारी ऐसे मैली विद्या वगैरह वो भी सारे हैं, उनका भी अभ्यास है, तो उसके बाद उस हाँ भ्रष्ट होते हैं ना, उसका यूटिलाइज करना चाहते हैं या जो कुछ होता है परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो दस पूर्वी जानकर जो अपने संयम से और इससे भ्रष्ट हो जाए तो उनको भिन्न दशपूर्वी कहेंगे, और अभिन्न दशपूर्वी इसका अभ्यास करने के बावजूद भी वो तो अपने सम्यक और संयम से भ्रष्ट नहीं होते हैं। किसका? मुनि श्रेणी चढ़ते तो उनके दस पूर्वी का तो होना ही चाहिए मिनिमम, यानी पूर्व विदों को ही श्रेणी चढ़ी जाती है, तो उसमें तो कोई दस पूर्वधारी है और कोई चौदह पूर्वधारी है। चौदह पूर्वधारियों का गिरने का सवाल नहीं होता, समझ आई ना? गिरने का नहीं, ये वो ज्ञान से भ्रष्ट नहीं होते हैं, और दस पूर्वधारी दोनों प्रकार के होते हैं। तद्भव मोक्षगामी भी हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि श्रुत केवली है, पर श्रुत केवली है इसलिए क्योंकि श्रुत केवली कितने यहाँ पर भी हो गए ना पंचम काल में, वो सारे मोक्ष नहीं गए थे। श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा वो बात बताई थी, उपशम श्रेणी भी चढ़ने के लिए। आगे 11 नंबर, कल्याणवाद पूर्व दश वस्तुगत 200 प्रावृतों के 26 करोड़ पदों द्वारा, इसमें भी बहुत है ना 26 करोड़, वो कितने देखे थे आत्म प्रवाद में हमने 26 करोड़, वहां पर भी थे 16 वस्तुएं थी और 26 करोड़, यहाँ 10 वस्तु है और 26 करोड़। हाँ, पदों द्वारा सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और तारागणों के, तारागण है ताराओं के समूह, किसमें अंतरिक्ष ने जैसे आकाश धुंधला धुंधला है तो उसको देखकर कोई ऐसे आगाही ख्याल में आती, उनके ज्ञान में आती, उस संबंधी जो कुछ विद्या है, ये तो ज्ञान का एक प्रकार है। अंतरिक्ष ने तो हमें जो दिखता है उसकी बात है, अंतरिक्ष से अच्छा
ये पंचम काल में है, पंचम काल के अंत तक ये पूर्वों का ज्ञान होगा सभी ने,
पंचम काल के अंत तक नहीं होगा, अभी उसमें से धर्मसेनाचार्य को कुछ कुछ था ना उसमें से,
वो तो शुरुआत में हो गए।
अरे अंत तक अभी अभी कितना ज्ञान बचा है, ये षटखंडागम संबंधी है, धवला मधमा धवला जय धवला आदि है, इतना ज्ञान अभी चल रहा है ना, तो ये रह सकता है जो धर्मसेनाचार्य ने जो किसकी उस समय, तो ये सारा मुखोद्गत था और वो यानी मौखिक ही एक दूसरे को चला, कब तक धर्मसेनाचार्य तक तो थोड़ा थोड़ा सभी अंगों का पूर्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था उनको, अंश था प्रत्येक का, पूरा तो नहीं रहा था, ये नहीं रहा, मुनि रहेंगे इतना सारा ज्ञान नहीं रहेगा, अभी है उतना, हो सकता है प्रिजर्व हो जावे, ख्याल में आते हैं बस, जो लिखित रूप से है जो छपाई हो चुकी है, अभी उसका अभ्यास कोई नहीं ही करेगा तो क्या करेगा। श्रेणी कैसे चढ़ेगी?
नहीं चढ़ेंगे नहीं,
श्रेणी तो चढ़ते ही नहीं ना पंचम काल में, दस पूर्व का एक पूर्व का भी नहीं है किसी को, पूरे पूर्व का ज्ञान कहाँ रहा है अभी बचा?
हाँ, इसलिए मेरे
नहीं तो पूर्व का क्यों प्रश्न आया ये?
नहीं नहीं मेरे कितना मैक्सिमम ज्ञान होगा पांचवें पांचवें साल तक?
अरे अभी तक नहीं बचा तो पांचवें के अंत तक कैसे जाएगा? यथा योग्य हीनाधिक होगा। अभी ग्रंथ जितने उपलब्ध है, हो सकेगा पूर्व का कोई संस्कार उत्पन्न होगा, उसको समझ में आ जाएगा तो पढ़ेगा जानेगा, हो सकता है ना उसका किसी का ज्ञान वो हीनाधिक होता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि जैसे शरीर की कम हो रही है, हाँ ये है कि इसमें रुचि वाले जीव कम हो जाएंगे। आजकल तत्व ज्ञान में रुचि वाले कितने मिलते हैं, साधन तो और ज्यादा बढ़े, पहले जो नहीं थे इतने साधन उपलब्ध है। अभी हमारी बहनें अमेरिका में बैठकर यहाँ का सुन रही है, साधन कितने बढ़ गए रुचि वाले। जिसको रुचि है उसको निमित्त बन जाएंगे, वैसे निमित्त से नहीं होने वाला है। समझ में आता है ना, जिसकी जो ज्ञान की योग्यता है उतना जानेगा और उसको वैसा निमित्त भी सहज रूप से मिल जाएगा। आप ये धवला आदि पढ़ रहे हैं, अभी 100 साल के पहले धवला दर्शन मात्र अवेलेबल था, वो छूने तक की किसी को परमिशन नहीं थी, दूर से नमस्कार करो और चले जाओ। टोरमल जी साहब ने लिखा है ना, वो तो लेने को गए थे साउथ में तीन जना, तो वहां तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था उस जमाने, नहीं नहीं था ना, ये तो शांति सागर महाराज आए थे उनके बाद ये हुआ था, उनके कारण ये बाहर आ गए। और उसके पहले भी ये जो कुछ ये लिपि बनाने के लिए ऐसे बड़े बड़े जो श्रावक उन्होंने धन इकट्ठा करके उनको बताया था, इसका सारा इतिहास है ना, हमने पहले पढ़ा था। ये आरा के कोई थे और वहां यानी ऐसे 4-5 जन थे हिंदुस्तान में जो बहुत धनवान भी थे और इसको प्रिजर्व करना चाहते थे, तो उसकी प्रतिलिपि बनवाई थी उन्होंने धन देकर, उस कॉपी बनाई। अभी आजकल कितना आसान हो गया, जीरोक्स कर जाओ चलो ठीक ग्रंथ हो जाएगा प्रिजर्व। तो कितनी मेहनत कितनी हिफाजत करनी पड़ती होती, एक एक शब्द वैसा का वैसा लिखना। अभी उसमें अभी आप लिखने बैठ जाओ, 2 लाइन छूट भी जाएगी, एक अक्षर यहाँ कुछ है वहाँ देखकर यहाँ लिखते लिखते कुछ हम लिखना चाहते कुछ है और लिखा जा, बोलते समय नहीं होता है, देख रहे शब्द और कोई गलत निकल जाता है तो आप लोगों को ख्याल में आता है, आप बताते हैं, बोलने वाले को भी पता नहीं हमने गलत बोल दिया, तो लिखने में भी कितनी अशुद्धि होती होगी। इसलिए उसके जो ये शास्त्र बनाते तो अलग अलग लिपियों को सामने रखकर उसकी बनाई जाती है कि उसके नाम फिर देती है, इसको ये अ प्रति ये ब प्रति, उसमें इसी ऐसा लिखा है, उसमें पाठ भेद है, ऐसा कहें ना। अब यहाँ हमें लिखा है कहीं वेदता लिखा, कहीं वेद वेद लिखा, कहीं वेदो वेदी लिखा है, तो ऐसा पाठ भेद आता है। पाठ भेद है ना, कहीं अन्य प्रकार से लिखा हुआ पाया जाता है तो उसका भी फिर अर्थ बताते हैं। तो उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, हमें तो रेडीमेड है। रुचि अधिक थी और उतने समर्पित थे देवगुरु शास्त्र के प्रति, अभी इतने कौन समर्पित रहेंगे, होगी विरल है, वो करते रहेंगे ऐसा, ख्याल में आती है ना बात। अभी झट से कुछ करना है, अब हाथ से भी नहीं लिखना है, जीरोक्स बना दो। स्कूल में मुझे याद है कुछ ऐसा था वहां पर और लिखना था तो रोज के 6-6 घंटे जाके हम उसकी कॉपी बना के रखते थे, रोज के थे छुट्टियों में। और आजकल क्या, चलो इधर से एक दूसरे को कॉपी दे दो फिर वो उधर ही रह जाते फाइल में, दिमाग में कुछ नहीं जाते।
मैंने क्यों पूछा कि धारणा में ज्ञान देता है, संस्कार की अपेक्षा जो चलता है पूर्वभव का, वो ज्ञान का उगाड़ अभी हो सकता है पांचवे काल में, लिखित रूप से तो कुछ नहीं बचा है।
पूर्व का ज्ञान धारण रूप से लेकर कोई यहाँ नहीं जन्म लेगा,
नहीं
यहाँ क्यों आएगा, वो छोटे काल वाले जी देखते में चला गया। तो मुनिराज जो पूर्वों का ज्ञान वाले है वो मरकर दे जाएंगे देव में, ख्याल में आते हैं। और धारणा रूप से क्या, एक एक बात थोड़ी याद में आती है, धारणा रूप से हाँ ऐसा हो सकता है कि ग्रंथ सामने आ गए उसका अर्थ ख्याल में आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। और 21,000 वर्ष उसमें पाठी कहते हैं किसी किसी को, अभी उसका भी ख्याल मुझे नक्की नहीं है, क्योंकि लोकोत्तर है, लोकांतिक जो है वो द्वादशांग के पाठी कहने में आते हैं और वो सर्वार सिद्धि में भी बताते हैं। तो यहाँ से वो द्वादशांग के पाठी मरकर गए होंगे, परंतु वहाँ पर उनका कितना, और ऐसा भी है ना, वो तो तीर्थंकरों के उसमें भी जा सकते हैं,
जाते हैं।
अभी वो सर्वार सिद्धि वाले तो नहीं जाएंगे, लोकांतिक भी जाते, वो दीक्षा कल्याणक में जाते, बाद में भी इतने नहीं जाते। अभी वो किस अपेक्षा से कहा, इतना केवल शास्त्र में उसका वर्णन आता है। द्वादशांग के पाठी होते हैं वो लोकांतिक है, वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, उनको देवर्षि कहते हैं, देवों के ऋषि, देवों में कोई ऐसे ऋषि मुनि तो नहीं होते। फिर उनका जो लौकिक जो है जीवन, उसके आधार से उसको बताते हैं। अपनी बात यहाँ कहाँ चल रही थी, देखो कल्याणवाद पूर्व 122 पेज नीचे से दूसरी लाइन, कल्याणवाद पूर्व दश वस्तुगत 200 प्रावृतों के 26 करोड़ पदों द्वारा सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और तारा गणों के चार क्षेत्र, चार ने वो संचार कौन से भ्रमण कक्षा, उनकी रूट, जिस रूट से वो गमन करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसको चार क्षेत्र कहते हैं। चार करते वो संचार समझ लो तो यानी वो ख्याल में आ जाएगा। उपपाद स्थान, उपपाद यानी उनके जन्म के स्थान, गति वक्र गति तथा उनके फलों का, पक्षी के शब्दों का, और अरिहंत अर्थात तीर्थंकर बलदेव वासुदेव और चक्रवर्ती आदि के गर्भावतार आदि महाकल्याणकों का वर्णन करता है। कल्याण यानी पक्षियों की भाषा। अभी ये इनकी वक्र गति जिसको कहते हैं, नहीं वक्र गति का अर्थ है, वक्र गति क्यों कहा उसका, इसमें क्या लिखा है, जीव कांड में देखेंगे 505 होगा ना, चार कल्याणकों का है वाद अर्थात प्ररूपण जिसमें। अच्छा कल्याणकों के बारे में, कल्याणवाद तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण पति नारायण के गर्भादि कल्याण तथा महाउत्सव, पुनश्च उनके कारण वो छोड़श भावना तपश्चरण इत्यादि क्रिया, पुनश्च चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र इनका गमन विशेष, ग्रहण शकुन फल, ये वक्र गति यानी हम कहते ना ये शनि की वक्र गति चल रही है वो वाला मुझे लगा शकुन फल वगैरह उसकी बात है। आगे प्राणावाय पूर्व, हमने उसका नाम प्राणावाद भी देखा था है ना, दश वस्तुगत 200 प्रावृतों के 13 करोड़ पदों द्वारा, उसमें 26 करोड़ थे इसमें 13 करोड़ है। शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, ये आयुर्वेद की उत्पत्ति यहाँ जैन आगम से हुई है। पूज्यपाद स्वामी ने भी कितना ही वो वेद होंगे, आयुर्वेद के बहुत सारे उनके ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं पूज्यपाद आचार्य। तो शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भूति कर्म अर्थात शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्म लेपन सूत्र बंधनादि कर्म, यानी कोई भस्म लेपन है कुछ राख वगैरह यानी तो एप्लीकेशन को कहते हैं, सूत्र बंधन वो तो बांधते हैं ना, आपने शायद वो सुना होगा कभी, वो डायरिया होता है तो अंगूठे को बांध के रखते, कभी सुना है देखा होगा ना कि नहीं देखते, ऐसे कोई उसकी विधि होगी यानी अलग अलग यानी ट्रीटमेंट के तौर पर। जांगुली प्रक्रम यानी विष विद्या, यानी कितने ही बीमारियों के लिए वो आजकल क्या खा रहे हैं, ऋषि खा रहे हैं उसके ऊपर लिखा है ना, हाँ पॉइजनस है, डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना, तो उसकी विशिष्ट मात्रा में लेने से वो उसका उपचार रूप से हो जाता है। वो कितनी दवाइयाँ वो पारे से बनाते थे पहले, और पारा तो कितना पॉइजन होता है, उसे मिशन कितनी बताते, विशिष्ट मात्रा में लेने से वो बातें होती। क्रिया विशाल पूर्व, ये 13 नंबर का, 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 9 करोड़ पदों द्वारा, लेखन कला आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, शिल्प कला का, काव्य संबंधी गुणदोष विधि का, छंद निर्माण कला का वर्णन करता है। यानी इसमें तो सारे आ जाएंगे, संगीत नृत्य वगैरह सभी कलाओं का इसमें वर्णन आ जाएगा। लोक बिंदुसार पूर्व, 10 वस्तुगत 200 प्रावृतों के 12 करोड़ 50 लाख पदों द्वारा, 8 प्रकार के व्यवहारों का, 4 प्रकार के बीजों का, 1 क्रिया विशाल की बात अलग है, तो बाद में बने। हाँ, मोक्ष को ले जाने वाली क्रिया का और मोक्ष सुख का वर्णन करता है। देखो ये क्रिया विशाल है ना, उसके बारे में नीचे लिखा है फुटनोट में, नीचे से वो 4 नंबर का है, उसको पढ़ेंगे। देखो क्रियादि भी, हाँ क्रिया विशाल, क्रिया से क्या समझना, नृत्यादि भी विशालम विस्तीर्णम शोभमानम वा क्रिया विशालम त्रयोदशम पूर्वम। यानी उसमें क्या क्या नृत्य वगैरह का उसमें सारा वर्णन होगा, आदि क्रियाओं का। तच्च संगीत शास्त्र छंद अलंकार आदि 72 कला, ऊपर बताया था ना 72 कला, 72 कलाओं में संगीत है, शास्त्र है, छंद है, अलंकार है वगैरह, यानी साहित्य के बारे में जो होता है ना, छंद अलंकार काव्य के बारे में वो सब। चतुष्टी स्त्री गुणान, वो ऊपर बताया था ना, स्त्री के 64 गुण। शिल्पादि विज्ञानानि 84 गर्भाधानादि कहा, यानी शिल्पादि कला का, और 84 गर्भाधान वगैरह का 84 क्रियाएं वो बताए जाते हैं। अष्टोत्तर शतम सम्यक दर्शनादि कहा, यानी सम्यक दर्शन की 108 कुछ क्रियाएं बताई है। पंचविंशति देव वंदनादि कहा, नित्य नैमित्तिका क्रियाश्च वर्णयति। देव वंदनादि जो नित्य नैमित्तिक क्रिया है 25 प्रकार की, वो उसमें बताई है। इसमें कुछ खास है क्या क्रिया विशाल, वही जो अभी हमने संस्कृत में से पढ़ा वही लिखा है इसके अंदर। त्रिलोक बिंदु सार में इतना लिखा है, त्रिलोक का बिंदु अर्थात अवयव और सार इनका प्ररूपण है, जिसमें यानी उसमें 3 लोक का स्वरूप है, 26 परिक्रम 8 व्यवहार 4 बीज, ये सारे गणित के है ना, बीज गणित। परिक्रम भी वो गणित के जो प्रोसेस है ना, ऐड करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग देना, वो सारे परिक्रम में आते हैं। चलो, इन 14 पूर्वों में संपूर्ण वस्तुओं का जोड़, सभी वस्तुओं का जोड़े नहीं क्या, अभी हमने वस्तु देखे ना, हाँ उत्पाद में इतने हैं, अग्रणी में इतने हैं, वो सभी वस्तुओं की अगर संख्या हम कहेंगे 195 है, और संपूर्ण प्रावृतों का जोड़ 3900 है। ऐसा कैसा, हाँ प्रावृत पदों का जोड़ नहीं बताया, प्रावृतों का बताया। मैंने 195 इंटू 20 किया ना उन्होंने, 195 इंटू 20, पेज पर आते हैं। ये ये हमने अर्थाधिकार की बात की थी वहाँ पर, और उसमें ये 14 पूर्वों की बात की थी। पहले पूछा गया था, पहले तो श्रुत ज्ञान से प्रयोजन पूछा था, तो श्रुत ज्ञान में अंग बाह्य भी और अंग प्रविष्ट भी, और फिर उसके सारे भेद बताए थे, तो उसमें से किससे प्रयोजन है पूछा था, तो ये दृष्टिवाद से प्रयोजन। फिर दृष्टिवाद पर वो अनुक्रम नाम सब बताया, तो उसके अर्थाधिकार बताए, तो दृष्टिवाद के हमने अर्थाधिकार पढ़े, परिक्रम भी है, सूत्र भी है, वो सब है, तो उसमें कहते पूर्वगत से प्रयोजन है, तो बाकी छोड़ा। फिर पूर्वगत पर वो पूर्वानुपूर्वी वगैरह लगाया, नाम बताए, उसके अर्थाधिकार बताए, उसके अर्थाधिकार बता चुके। अब उसके अर्थाधिकार में 14 पूर्वों के नाम, उसका स्वरूप, उसका विषय सब बताए। अब यहाँ पूछ रहे उनमें से किससे प्रयोजन है, ख्याल में है ना, यानी एक एक से आ गई थे। अब देखो इस जीवस्थान शास्त्र में क्या उत्पाद पूर्व से प्रयोजन है, क्या अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। तो आप नाम बताना, सबके विषय की पृच्छा करो, पूरा वाक्य मत बनाओ, नाम तो बताओ, देख के बताओ।
अग्रायणी
पूर्व उत्पाद और अग्रायणी दो नाम तो उन्होंने बता दिए। देखो पेज नंबर 115 निकालो, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुप्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, और लोक बिंदुसार पूर्व। तो इसमें से हर एक का नाम लेके अलग अलग हिस्से किससे प्रयोजन है पूछा था। यहाँ पर न तो उत्पाद पूर्व से प्रयोजन है और न दूसरे पूर्वों से प्रयोजन है, इस तरह सबका निषेध करके यहाँ पर अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है, इस तरह का उत्तर देना चाहिए। अब अग्रायणी पूर्व में क्या विषय आया था देख लो जरा। ज्ञान को अग्रायण कहते हैं और उसका प्रयोजन है ना, बताएंगे अभी उसके अर्थाधिकार क्या क्या है, उसको बात यहाँ करेंगे। तो 14 पूर्वों में से जीवस्थान ये अग्रायणी पूर्व से प्रयोजन है। अभी इस पर पांचों उपक्रम लगाएंगे। हाँ, यानी पहले अनुपूर्वी बताएंगे, ये दूसरे नंबर का पूर्व है, उल्टे क्रम से कितना नंबर आएगा उसका, तेरवा नंबर आएगा। फिर उसका नाम कहेंगे ना? तो देखो उस अग्रायणी पूर्व के पांच उपक्रम है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी तीन प्रकार की है। यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर दूसरे से, क्योंकि दूसरे नंबर का है पूर्व, पश्चादानुपूर्वी से गिनती करने पर तेरहवें से, और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर अग्रायणीय पूर्व से प्रयोजन है, क्योंकि यथा तथा कहने से मात्र उसका नाम ही लेने से काम बनेगा, उसको नंबर नहीं दे सकते। अंगों के अग्र अर्थात प्रधानभूत पदार्थों का वर्णन करने वाला होने के कारण अग्रायणीय यह गौण्य नाम है, यानी गुण के अनुसार नाम है। अग्रायणीय ना, अंगों के अग्र यानी पदार्थ, प्रधानभूत पदार्थों का वर्णन, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्यात और अर्थ की अपेक्षा अनंत रूप है। प्रमाण में हमने यही लिया था, श्रुत ज्ञान में सर्वत्र। इसमें स्व समय का ही कथन किया गया है, इसलिए स्व समय वक्तव्यता है। अग्रायणी पूर्व के अर्थाधिकार 14 प्रकार के हैं, वे इस प्रकार है। देखो ये अग्रायणी पूर्व के अर्थाधिकार अन्यत्र हमने नहीं देखे थे, यहीं पर बताएं। पूर्वांत, अपरांत, ध्रुव, अध्रुव चयन लब्धि अर्धोपम प्रणधिकल्प अर्थ भौम व्रतादिक सर्वार्थ कल्प निर्याण अतीत काल में सिद्ध और बुद्ध और अनागत काल में सिद्ध और बुद्ध। तो ये उसके 14 अर्थाधिकार है। तो ये जो जीव स्थान नाम का निकला है वो कौन से अर्थाधिकार में से लिया हुआ है या किससे प्रयोजन है ये पूछेंगे अभी। ये सबका यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया है उनके विषयवादि का। तो कहते कि इनमें से यहाँ पर क्या पूर्वांत से प्रयोजन है, क्या अपरांत से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। ये 14 के 14 के बारे में, यहाँ पर पूर्वांत से प्रयोजन नहीं है, अपरांत से प्रयोजन नहीं है, इत्यादि रूप से सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु चयन लब्धि से यहाँ पर प्रयोजन है, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। देखो कहाँ से शुरुआत की थी हमने, द्रव्य सूत्र में से, अंग प्रविष्ट में से कौन सा अंग लिया, बारवा अंग, बारवा दृष्टिवाद अंग में से पूर्व कौन सा लिया, अग्रहणी पूर्व, और अग्रहणी पूर्व में से कौन सा अर्थाधिकार लिया है, तो चयन लब्धि, अग्रहणी पूर्व के चयन लब्धि से प्रयोजन है। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी चयन लब्धि का उपक्रम करेंगे वही अनुपूर्वी, फिर नाम, उसके बाद क्या लिया था, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अनुपूर्वी देखिए, अभी चयन लब्धि कितने नंबर पर था, 5वें नंबर पर था, पूर्वानुपूर्व, और पीछे से हम 14 से अगर गिनेंगे
8वां नंबर,
10वां होगा ना,
नहीं 14 पूर्व है ना, सब
5वें के पहले 4 छोड़ो ना भैया देखो पूर्वानुपूर्वी पश्चादानुपूर्वी यथा तथानुपूर्वी के भेद से अनुपूर्वी 3 प्रकार के हैं। उन तीनों में से यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर 5वें अर्थाधिकार से, पश्चादानुपूर्वी से गिनती करने पर 10वें अर्थाधिकार से, मैंने भी पढ़ा नहीं था मगर मैंने वो उसके पहले 4 रह जाते ना इसलिए इसको 10वां कह दिया, और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर चयन लब्धि नाम के अर्थाधिकार से प्रयोजन है। यह अर्थाधिकार चयन विधि और लब्धि विधि का वर्णन करता है, ये उसका विषय बता रहे हैं, अभी बताएंगे, क्योंकि उसका विषय बताएंगे ना तो ख्याल में आ जाएगा। इसलिए चयन लब्धि, वो ल रह गया वहां, चयन अद्धि हुआ है, चयन लब्धि, चयन लब्धि एक गौण्य नाम है, यानी गुण के अनुसार नाम है। चयन विधि बताया था और लब्धि विधि, चयन लब्धि कैसे, क्या चयन विधि चाहिए ना,
ऊपर क्या लिखा है, चयन विधि से चयन लब्धि यह गौण्य नाम है, गौण्य नाम मतलब किसका है,
नहीं मुझे क्या कहना चाहता, चयन लब्धि गुण नाम हो, चयन लब्धि है गौण लाभ, चयन विधि और लब्धि, चयन लब्धि उसका नाम ही बताया था, उसमें दो उसके विषय है, इसलिए गौण्य नाम है। अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्यात तथा अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। स्व समय का कथन करने वाला होने के कारण यहाँ पर स्व समय वक्तव्यता है, वो तो पूर्वों से ही हमने देखा था, उसमें स्व समय की वक्तव्यता थी। चयन लब्धि के अर्थाधिकार 20 प्रकार के हैं, उनमें से यहाँ क्या प्रथम प्रावृत्त से प्रयोजन है, क्या दूसरे प्रावृत्त से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। अग्रायणी में ये पूर्व अग्रायणी में एक मिनट दस वस्तु थे, 14 वस्तु ही थी ना उसमें। अच्छा, ये वस्तुओं के ही नाम बताएं। ये जो 14 देगी वो वस्तु हो गए, बराबर है ना? अग्रायणी पूर्व के 14 वस्तु होते, तो ये वस्तुओं के नाम देखे हमने। ये 14 वस्तु है और वो 14 वस्तु है तो एक एक वस्तु कितने प्रावृत की होती है? 20 प्रावृत की। इसलिए अर्थाधिकार 20 बताए। चयन लब्धि ये वस्तु हुई, पांचवी वस्तु है। अग्रायणी पूर्व हुआ, 14 पूर्व में से अग्रायणी ये दूसरे नंबर का पूर्व है। उस पूर्व में कितनी वस्तु होती है? तो 14 वस्तु, वस्तु 14 है। अग्रायणी पूर्व में 14 है, हर एक पूर्व की अलग अलग हमने संख्या देखी थी। इसमें 14 वस्तु होती है, उसमें पांचवे वस्तु का नाम है चयन लब्धि, और हर वस्तु में 20-20 प्रावृत होते हैं, इसलिए इसके 20 अर्थाधिकार बताए। यानी 20 अर्थाधिकार बताए ना, यानी 20 प्रावृत है ये। उनमें से यहाँ क्या प्रथम प्रावृत से प्रयोजन है, क्या दूसरे प्रावृत से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में पृच्छा करनी चाहिए। यहाँ पर प्रथम प्रावृत से प्रयोजन नहीं है, दूसरे प्रावृत से प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सबका निषेध कर देना चाहिए, किंतु यहाँ पर चौथे प्रावृत से प्रयोजन है। देखो हम कहाँ कहाँ, पहले में पहले वो अंग प्रविष्ट में से हमने दृष्टिवाद अंग को लिया था, दृष्टिवाद अंग में से पूर्वगत वाला भेद लिया, पूरा अंग नहीं लिया, पूर्वगत। पूर्वगत में तो 14 पूर्व थे, उसमें से अग्रायणी पूर्व को लिया। एक अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु है, उसमें से पांचवी चयन लब्धि नाम की वस्तु ली। अब ये पांचवी वस्तु में 20 प्रावृत है, 20 प्रावृत में से चौथा प्रावृत लिया। अब उस पर लगा उपक्रम लगा नहीं चाहिए, उसका उपक्रम पांच प्रकार का है ना? आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमें से पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी के भेद से आनुपूर्वी तीन प्रकार की है। यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गिनती करने पर चौथे प्रावृत से बता ही था उन्होंने ना, चौथा है करके। पश्चादानुपूर्वी से गिनती करने पर 17वें प्रावृत से, और यथा तथानुपूर्वी से गिनती करने पर कर्म प्रकृति प्रावृत से। अभी यानी हम कहाँ तक आए, अग्रायणी पूर्व के चयन लब्धि नाम की वस्तु के, ये जो चौथा प्रावृत है उसका नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत, उससे प्रयोजन है। यह कर्मों की प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करता है, इसलिए कर्म प्रकृति प्रावृत यह गौण्य नाम है। ये हमारे सारे आगम के नाम तो गौण्य नाम ही बताए हैं सर्वत्र। इसका वेदना कृष्ण प्रावृत यह दूसरा नाम भी है। वेदना ने ये बताया, कर्मों के उदय को वेदना कहते हैं। कृष्ण का अर्थ है संपूर्ण, कृष्ण का संपूर्ण, कृष्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसा हमने देखा था ना। उसका यह निरवशेष रूप, कृष्ण ने संपूर्ण है ना, निरवशेष रूप यानी संपूर्ण, कुछ बाकी रखे बिना यानी संपूर्ण वर्णन करता है। किसका? देखो, कर्मों के उदय को वेदना कहते हैं, उसका यह निरवशेष रूप वर्णन करता है, इसलिए वेदना कृष्ण प्रावृत यह भी गौण्य नाम है। कौन से दो नाम है इसी के? कर्म प्रकृति प्रावृत या वेदना कृष्ण प्रावृत, कर्मों के उदय की बात है यहाँ पर।
कहते हैं हमने देखा था कि ये सभी जगह हमने देखा था ये स्व समय का वर्णन करने वाला है, तो ये कर्म का सभी जो चलेगा वो भी स्व समय का वर्णन करेगा।
स्व समय का अर्थ क्या है पहले ये नक्की करो,
कर्मों की अपेक्षा उसका
अपेक्षा मत लगाओ, स्व समय का अर्थ क्या है वो शुद्धात्मा की बात नहीं है, जीन मत को स्व समय का।
मेरी गड़बड़
हो गई, पहले से देखे है ना, स्व समय का कथन करता है या पर समय का कथन करता है, हमने देखे थे आक्षेपणी विक्षेपणी वगैरह बातें,
पर समय
याद आ गया। ये समय सार वाला स्व समय पर समय नहीं लेना है, उसमें शुद्धात्मा को स्व समय कहा है। और यहाँ तो कर्म की बात किसने बताई, जिनेन्द्र भगवान ने बताया ना, वो जिनेन्द्र मत के अनुसार है तो उसको स्व समय का कथन कहेंगे। जैसे सांख्यमती भी प्रकृति कर्मों की बात करते पर वो तो अलग से उसका कथन करते, तो वो पर समय में चली जाएगी, ख्याल में आती बात। अच्छा है प्रश्न पूछना, तो क्या है जरा रिवीजन हो जाती है ना, नहीं तो आप जैसे और भी सब समझ लेते हैं। हाँ ये बारंबार आगे भी कभी कहीं आता है कि समयानुसार, तो समयानुसार वो एक दो समय के अनुसार नहीं, समयानुसार नहीं अपने जिनमत के अनुसार शास्त्र के अनुसार उसको वह स्व पर भी बात नहीं करेंगे, समयानुसार इसका समझ लेना। तो ये हमको विवेक रखना चाहिए वहाँ उसका अर्थ क्या होता है। देखो यहाँ कर्म के उदय की बात है, क्योंकि जीव स्थान जो है जीवों के जो भेद बताएंगे तो कर्म के उदय के अनुसार पढ़ेंगे ना, नहीं समझे, ये जो एक इंद्रियादि भेद पढ़ेंगे, 14 जीव समास पढ़ेंगे, मार्गणा स्थान के भेद पढ़ेंगे, किसके अनुसार पढ़ेंगे, कर्म के जीव के भले परिणाम है वहाँ पर, परंतु वहाँ कर्मों का उदय निमित्त रूप से है यहाँ पर, यही कहना चाहते हैं। ये कर्म प्रभृति कर्म प्रकृति प्रावृत या दूसरा नाम है वेदना कृष्ण प्रावृत, और वो किसका अर्थाधिकार है, चयन लब्धि का, और चयन लब्धि कौन से पूर्व की है, अग्रायणी पूर्व का भेद है, ये पक्का नक्की याद रखना। तो यह भी गौण्य नाम है, यह अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग रूप द्वारों की अपेक्षा संख्यात प्रमाण और अर्थ की अपेक्षा अनंत प्रमाण है। स्व समय का ही कथन करने वाला होने के कारण इसमें स्व समय वक्तव्यता है, स्व समय ने जिनमत लिखो वहां पर, हाँ अभी कर्म प्रकृति प्रावृत अर्थाधिकार 24 है, हमने देखा था ना एक प्रावृत में 24 प्रावृत प्रावृत होते हैं या प्रावृतक प्रावृतक होते हैं, ये उसके अर्थाधिकार है, यानी इसको हम प्रावृत प्रावृत कहते हैं उसको। कल आपने लिख के लिया था ना क्या क्या था, अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति अनुयोग और उसके बाद प्रावृत प्रावृत था ना, क्या था वही प्रावृतक प्रावृतक कहो या प्रावृत प्रावृत कहो एक ही बात है। देखो अक्षर तो समझते हैं, अक्षर के बाद पद लेना, 1634,83,00,000 7,888 अक्षरों का एक पद, संख्यात हजार पदों का एक संघात, फिर संख्यात हजार संघातों का एक प्रतिपत्तिक, संख्यात हजार प्रतिपत्तिकों का एक अनुयोग, चार अनुयोग इज इक्वल टू एक प्रावृत प्रावृत या प्रावृतक प्रावृतक दोनों कहेंगे उसको, और ऐसे 24 प्रावृतक प्रावृतक का एक प्रावृत जो अभी हम देख रहे हैं। अभी कौन से प्रावृत की बात करें हम, कर्म प्रकृति प्रावृत या वेदना कृष्ण प्रावृत, उसी का दूसरा नाम है, अभी उसमें ये 24 प्रावृतक प्रावृतक हो गए, अर्थाधिकार उन्होंने कहाँ लिखा है हमने बताया आपको,
हम लोग ने लिखा
है, ये तो प्रावृत है, प्रावृत के भेदों को प्रावृतक प्रावृतक कहेंगे, अभी ये 24 अर्थाधिकार बता रहे वो क्या है, प्रावृतक प्रावृतक है, क्योंकि एक प्रावृत में 24 प्रावृतक प्रावृतक होते हैं और एक वस्तु में 20 प्रावृत होते हैं। अभी हमने देखे ना, देखो अग्रणी तो पूर्व था, उसमें वस्तु कितनी देखी थी, 14 वस्तु देखी थी। उसमें कौन सी वस्तु की बात है थी यहाँ पर, चयन लब्धि वाली,
चयन लब्धि,
चयन लब्धि में वो प्रावृत कितने हैं, 20 वे प्रावृत में से ये चौथा
प्रावृत,
कर्म प्रकृति प्रावृत, उसमें प्रावृतक प्रावृतक 24 हो गए, ये कहना चाहते हैं। यानी यहाँ कर्म प्रकृति प्रावृत के जो हम अर्थाधिकार कह रहे हैं उसी का अर्थ क्या है, प्रावृतक प्रावृतक की बात हो रही है यहाँ पर। ये 24 प्रकार के बताए ना, प्रावृत प्रावृत कहो या प्रावृतक प्रावृतक कहो, एक ही बात है, वहां क लगाया उन्होंने। समझ में आए ना हम कहें किसके क्या डिवीजन से, ये प्रावृतक प्रावृतक की बात चल रही है, उन्होंने नहीं लिखा पर हमने पहले देखा है ना। देखो देखो फिर से अक्षर देखे, वो 16 से 34 करोड़ पूरा है, उसने अक्षरों का एक पद लिखना है तो लिखो, देखो 1600 पहले तो अक्षर है ना, तो कितने अक्षरों का पद है, 1634 करोड़ 83 लाख, कॉमा लगा लो, 83 के बाद कॉमा लगा लो, 07888, ये कैसे पढ़ेंगे, 1634 करोड़ 83 लाख 7888 अक्षरों का एक पद। हाँ हाँ मध्यम पद, अभी यहाँ पद कहने से मध्यम पद ही है, द्वादशांक के पद है ना, हाँ तो ये यहाँ सर्वत्र जो पद कहे वो द्वादशांक है, वो मध्यम पद होते हैं। संख्यात हजार पदों का पद इज इक्वल टू संघात, ऐसा लिखो, संख्यात हजार पद इज इक्वल टू संघात, यानी एक संघात, संख्यात हजार संघात इज इक्वल टू प्रतिपत्ति क, संख्यात हजार प्रतिपत्तिक इज इक्वल टू एक अनुयोग, एक अनुयोग वो नेक्स्ट, संख्यात हजार प्रतिपत्तिक इज इक्वल टू एक अनुयोग, चार अनुयोग इज इक्वल टू प्रावृतक प्रावृतक, पहले प्रावृतक प्रावृतक, अब 24 प्रावृतक प्रावृतक इज इक्वल टू एक प्रावृत, और 20 प्रावृत इज इक्वल टू एक वस्तु, अब अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है परंतु वो उसका फिक्स प्रमाण नहीं है, जैसे उत्पाद पूर्व में अलग 10 किसी में 10 है होते हैं वस्तु, किसी में 16 वस्तु है, किसी में 12 वस्तु है, अलग अलग है। हाँ अभी हम उल्टा आ रहे, हमने क्या देखा था 12वें अंग के दूसरे अग्रायणी पूर्व थी उसमें वस्तु 14 है, 14वें में से 14 वस्तु है उसमें से कौन सी वस्तु ली हमने, चयन लब्धि नाम की वस्तु ली, उस एक चयन लब्धि में 20 प्रावृत है, तो अग्रणी पूर्व है उसमें 14 वस्तु है, लिखना आपको, अग्रणी पूर्व में 14 वस्तु, हाँ, अभी उसमें से पांचवी चयन लब्धि, पांचवी वस्तु चयन लब्धि, बराबर है ना? अभी एक वस्तु में प्रावृत कितने होते हैं? 20। उसमें 20 प्रावृत, हाँ, पांचवी वस्तु चयन लब्धि, उसमें 20 प्रावृत। अभी उसमें से चौथा प्रावृत है ना, 20 प्रावृत, उसमें से चौथा, उसका नाम बताए ना, कर्म प्रकृति प्रावृत, चौथा कर्म प्रकृति प्रावृत। प्रावृत है हाँ, अभी चौथा कर्म प्रकृति प्रावृत है ना, इसमें 24 प्रावृतक प्रावृतक है। उसको यहाँ अर्थाधिकार का है ना, हम आगे पढ़ेंगे, बाद में इसको पूर्ण करेंगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आई ना बस, उसके आगे की बात लिखेंगे बाद में, अभी पढ़ोगे, पढ़ के समझ कर लिखेंगे थोड़ा, कल फिर रिपीट करेंगे।
अनुयोग देखते हैं, चार अनुयोग,
वो बहुत पहले, उसके इसके और भेद चले जाएंगे, वो अनुयोग में चले जाएंगे।
अच्छा, वहाँ पे भी बहुत सारे भेद।
अभी इसको समझो पहले, ये सारे पढ़े आप जीव कांड में, दो दो बार, तीन तीन बार। कर्म प्रकृति प्रावृत के अर्थाधिकार 24 है, हमने देखा ना उसमें, वो वक्तव्यता वगैरह सब बता चुके। अभी अर्थाधिकार 24 है, वे इस प्रकार है, कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। अभी इसको अंडरलाइन किया नहीं, इसका अपना प्रयोजन इससे होना चाहिए, है ना? ये छठे नंबर का है। फिर निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेशा, लेशा कर्म, लेशा परिणाम, सात असात, दीर्घरस्व, भवधारणीय, पुद्गलत्व, निधत्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति और पश्चिम स्कंध। 24 हुए, निधत्त अनिधत्त ये जोड़ी में लेना है, उसको 20 नंबर दिया। बंधन अधिकार से प्रयोजन, वो तो बताएंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो सभी जगह आता ही है उसका। हाँ, अभी यहाँ किसके साथ संबंध है वो बताएंगे, वो सब आएंगे, थोड़ा थोड़ा तो सबका आता है, परंतु अभी यहाँ मुख्य प्रयोजन किससे है, ये सारे विषय तो हमने देखे हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी तो हमने केवल इसके नाम बताए ना, जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सो
ണമോര്യന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യണം നമോ ജനം നമോ ലോയ സപ്രസ്താവണം.